चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित मीरा प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी और ग्लोरियस सिमेंट डिवोटीज और ग्लोरियस सिमेंट डिवोटीज और ग्लोरियस सिमेंट डिवोटीज और ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 13 अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज की वंशजों का वर्णन। श्लोक संख्या 32 का तात्पर्य नहीं है तो मैं पढ़ूंगा, फिर 33 साथ साथ पढ़ेंगे। तथा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृप इष्टस्ते पुत्र कामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञ भो। हे राजन, आपका कल्याण हो, आपके कोई पुत्र नहीं है, अतः यदि आप तुरंत भगवान से प्रार्थना करें और पुत्र मांगें तथा यदि इस कार्य के लिए यज्ञ करें तो यज्ञ भोक्ता भगवान आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। तो ये जो प्रसंग है ये चल रहा है, राजर्षि अंग ने अश्वमेध यज्ञ किया है, ध्रुव महाराज के वंश में महाराज अंग हुए हैं, तो ब्रह्मा जी से वो जो है दसवीं पीढ़ी में है राजा अंग। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु और स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, ध्रुव से वत्सर, इस प्रकार से जो है चलती हुई पुत्र परंपरा में दसवें पुत्र हैं ये राजा अंग। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है और इस यज्ञ में देवता लोग आए नहीं, अपना भाग लेने के लिए आए नहीं, तो महाराज अंग बहुत चिंतित हो गए और बार बार पूछते हैं कि मेरी क्या गलती है, मेरे से कोई अपराध हो गया है, मेरे से कोई दोष हो गया है कि देवता लोग नहीं आ रहे हैं। तो ऋतुजों ने कहा कि नहीं, आप इसमें तो कोई यज्ञ सामग्री में कोई दोष है ही नहीं, किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, फिर भी देवता क्यों नहीं आ रहे हैं हम नहीं जानते हैं। तब राजा अंग ने सभा के जो सभी सदस्यों से पूछा, तो जो सदस्यपति हैं तो वो बता रहे हैं, तो वो क्या बता रहे हैं कि कोई दोष तो नहीं है आपके अंदर, कोई दोष नहीं, आपके जीवन में कोई पाप नहीं हुआ, लेकिन पिछले जीवन में आपका कुछ दोष हुआ है जिसके कारण आपको पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इस कारण देवता लोग नहीं आए। तो अब क्या उनका सुझाव है, उनका सुझाव है तथा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृप, कि हे राजन, आप जो है अब ऐसा साधन करिए कि आपको अच्छा पुत्र पैदा हो। इष्टस्ते पुत्र कामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञ भोग, तो जब इष्ट मतलब भगवान तुम्हारे द्वारा पूजित होंगे और तुम्हारी पुत्र की कामना होगी तो यज्ञ भोक्ता भगवान तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगे। अब श्लोक संख्या 33 आप लोग मेरे पीछे बोलिए। तथा स्वभाग गृहिष्यन्ति दिवोकसः यद् यज्ञ पुरुषः साक्षात् अपत्याय हरिर्वृतः तथा स्वभागधेयानि गृहीष्यन्ति दिवोकसः यद् यज्ञ पुरुषः साक्षात् अपत्याय हरिर्वृतः तथा स्वभागधेयानि गृहीष्यन्ति दिवोकसः यद् यज्ञ पुरुषः साक्षात् अपत्याय हरिर्वृतः। देखिए इसमें जो शब्द है ना साक्षात अपत्याय, साक्षात तोड़ने पर साक्षात अलग हो जाएगा, अपत्याय ठीक है ना, जो दा है वो आधा ता और फिर आ, इस प्रकार साक्षात अलग हो जाएगा, आधा ता साक्षात और फिर अपत्याय ठीक है ना, इस तरह से बोलिए।
బెస్ట్. వైష్ణో దేవి శబ్దార్థ తథా తత్పశ్చాత్ స్వభాగ ధ్యేయాని యజ్ఞ మే అప్నే అప్నే భాగ గ్రహిష్యంతి గ్రహణ కరేంగే దేవ ఓకశః సమస్త దేవతా యత్ క్యోంకి యజ్ఞ పురుషః సమస్త యజ్ఞో కే భోక్తా సాక్షాత్ అపత్యాయ పుత్ర కే లియే హరిహి భగవాన్ మృతః ఆమంత్రిత్ కియే జాతే హైన్. అనువాద్ మేరే పీచే బోలియే జబ్ సమస్త యజ్ఞో కే భోక్తా హరి కో పుత్ర కీ కామనా పూరి కర్నే కే లియే ఆమంత్రిత్ కియా జాయేగా తో సభీ దేవతా ఉన్కే సాథ్ ఆయేంగే ఔర్ అప్నా అప్నా యజ్ఞ భాగ్ గ్రహణ కరేంగే. తాత్పర్య పఢ్నే సే పహలే హమ్ సమ్జేంగే ఇస్ శ్లోక్ మే శబ్ద కిస్ ప్రకార్ సే హై. తథా స్వభాగ్ ధ్యేయాని, తథా కా మత్లబ్ క్యా హై, ఉస్ ప్రకార్ సే తత్పశ్చాత్ యా ఉస్ ప్రకార్ సే హై నా. స్వభాగ్ ధ్యేయాని, స్వభాగ్ కా మత్లబ్ అప్నా భాగ్, ధ్యేయాని మనే పాత్రో మే రఖే హువే హై. గ్రహిష్యంతి మనే గ్రహణ కరేంగే దివ్ ఓకశః, దివ్ కా మత్లబ్ స్వర్గ, ఓకశః మనే నివాసీ, స్వర్గ కే నివాసీ యానీ దేవతా లోగ్. तो यहाँ उनके भाग रखे हुए हैं तो उस प्रकार से वो ग्रहण करेंगे, अपने अपने भाग ग्रहण करेंगे आएंगे. यत् यज्ञ पुरुषा, यत् माने क्योंकि यज्ञ पुरुषा साक्षात, साक्षात यज्ञ पुरुष है, अपत्याय यानी पुत्र के लिए हरिर्वृतः हरि को वरण किया जाएगा. अगर हम हरि को वरण करेंगे, हरि का वरण करेंगे, ग्रता आमंत्रित करेंगे, अगर उनको हम चुनाव कर लेंगे उस यज्ञ में, उनका भोजन करेंगे उस यज्ञ में है, तो क्या होगा, सब देवता अपने आप आएंगे, उनको आना ही पड़ेगा, है ना. तो ये सदस्यपति बोल रहे हैं, है ना. अब हम सुनिए प्रभुपाद जी तात्पर्य क्या लिखते हैं. श्रील प्रभुपाद की, जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तो उसका उद्देश्य समस्त यज्ञों के भोक्ता विष्णु को प्रसन्न करना होता है, और जब वे यज्ञ स्थल में आने के लिए राजी हो जाते हैं तो सभी देवता स्वतः अपने स्वामी का अनुगमन करते हैं और ऐसे यज्ञों में उनका भाग उन्हें मिलता है. कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ देवताओं को नहीं वरन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त किए जाते हैं. तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ. तो प्रभुपाद तात्पर्य में जो बात बता रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. प्रभुपाद का ये कहना है कि यज्ञ का उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, है ना. तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, है ना. भगवान कहते हैं गीता में, भगवान कहते हैं सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम. नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित तो सर्वगत ब्रह्म है, है ना. और भोक्तारम यज्ञ तपसाम, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तो यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ. ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जान करके शांति प्राप्त करता है. अगर कोई व्यक्ति जो है यज्ञ करता है, है लेकिन भोक्ता के रूप में वो देवताओं को सोचता है कि भाई देवता देवताओं को जो है यज्ञ का भाग देने के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ, तो शांति नहीं प्राप्त होती है। भोक्ता रम्य के तपसाम अहम सर्व यज्ञा नाम भोक्ता चा प्रभु रे बचा न तो माम भी जानती तत्व नातस्वंदे दे। तो मैं ही सब देवता हूँ, सब यज्ञों का भोक्ता हूँ और प्रभु हूँ। न तो माम भी जानती, मुझे नहीं जानते इस प्रकार से तत्व न अतश्चवंती थे, इसलिए च्यवंती यानी गिर जाते हैं। अन्य देवताओं की पूजा कर सकते हैं, ये पिण्य देवता भक्ता जनते श्रद्धान्विता, अन्य देवताओं के भक्त होते हैं वो पूजा करते हैं श्रद्धा पूर्वक। तेपि मामेव कौन्ते जन्त विधि पूर्वकम, तो वे भी मेरी पूजा कर रहे हैं लेकिन अविधि पूर्वक कर रहे हैं, पूजा तो मेरी कर रहे हैं, अन्य देवताओं के भक्त होने के कारण वे जो है मेरी पूजा कर रहे हैं लेकिन अविधि पूर्वक, क्योंकि देवता के भक्त नहीं बनना है आपको। देवताओं की पूजा आप कर सकते हैं लेकिन देवताओं के भक्त नहीं बनना। अगर आपकी श्रद्धा है देवताओं के प्रति कि ये स्वतंत्र हैं देवता, अपने आप में सब देवता स्वतंत्र हैं और मैं देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, तो न तो माम अभी जानती, मुझको नहीं जानते हैं, तत्विन तत्व से मुझे नहीं जानते हैं, छवंती थे तो गिर जाते हैं, मतलब कर्म बंधन से नहीं छूट पाते हैं, इस भौतिक संसार में बंधन से नहीं छोड़ पाते हैं, चवंदित है। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभु रे बचा, तो मैं समस्त देवताओं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ और प्रभु हूँ, तो ये जानना जरूरी है। तो देवताओं की पूजा मना नहीं है, देवताओं की पूजा मना नहीं है, है ना। जो सात्विक यज्ञ भगवान सत्यवें अध्याय में बताते हैं, अफलाकांक्षी फिर यज्ञो विधि दृष्टो यज्यते यष्टव्यमेवेति मना समाधाय से सात्विका, अफलाकांक्षी फिर यज्ञो, तो देवताओं की पूजा यज्ञ में की जाती है लेकिन अफल आकांक्षी भी फल की आकांक्षा के बिना विधि दृष्टो शास्त्र विधि के अनुसार की जाती है। यष्टव्यम एव इति मना समाधाय, मन को समाधान करके कि यज्ञ करना चाहिए इसलिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ। सयज्ञ यष्टव्यम एव इति मना समाधाय सब सात्विका, तो सात्विक यज्ञ सतोगुणी यज्ञ है और महाराज अंग जो यज्ञ कर रहे थे वो सतोगुणी यज्ञ कर रहे थे, देवताओं की पूजा कर रहे थे लेकिन देवताओं से कुछ कामना नहीं कर रहे थे। देवताओं के भक्त नहीं है, तो इस प्रकार से इस भावना से उनकी जो है भावना यही है कि यज्ञ भोक्ता तो भगवान ही है, है ना। तो इस भावना से किसी देवता की भी पूजा की जाती है लेकिन कोई कामना नहीं, कोई भौतिक कामना नहीं है, उस देवता से कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार से है जैसे कि राजा के जो कर्मचारी हैं वो टैक्स वसूल करने आते हैं तो आप उनको टैक्स देते हैं लेकिन आपका जो है उस राज कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है, आपका संबंध राजा से भी, राजा को राजा के पास टैक्स जा रहा है इस भाव से आप टैक्स दे रहे हैं, तो इसी प्रकार से देवताओं की पूजा कर रहे हैं कि भगवान की पूजा हो रही है। तो इस भाव से जो है यज्ञ किया जा सकता है, जैसे नंद महाराज भी यज्ञ कर रहे थे, इंद्रयाग करते थे तो कई सौ सालों से चली आ रही थी इंद्र की पूजा, तो वो इंद्र के भक्त थोड़ी थे, ये करना चाहिए इसलिए कर रहे थे, और जब कृष्ण ने पूछा तो इंद्र की पूजा करना चाहिए पुत्र इसलिए क्योंकि वो वर्षा के देवता हैं, वर्षा करते हैं ना, ये इंद्र के भक्त नहीं थे, वो करना चाहिए इसलिए कर रहे थे, तो उस पूजा में कोई बंधन नहीं था। लेकिन कृष्ण ने पूजा क्यों बंद कराई, क्योंकि इंद्र को अभिमान हो रहा था कि मेरी पूजा हो रही है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति पूजा ले रहा है उसकी ओर से जो है दोष हो रहा था, दोनों तरफ से दोष होता है, कोई व्यक्ति घूस देता है कर्मचारी को तो वो भी दोषी होता है और कर्मचारी घूस लेता है तो वो भी दोषी होता है, लेकिन यहाँ पर जो नंद महाराज हैं वो दोषी नहीं है कि इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो इंद्र को घूस दे रहे हैं, इंद्र के भक्त बन गए वो, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कभी भी दोनों तरफ से गलती होती है कि तुमने घूस दी, तुमने घूस ली तो दोनों तरफ से गलती है, और कभी एक तरफ से गलती, इन्होंने तो भाई टैक्स लिया, टैक्स दिया लेकिन तुमने टैक्स अपनी जेब में रख लिया तो तुम्हारी गलती है। तो यहाँ पर जो है इंद्र की गलती भगवान देख रहे थे कि इंद्र जो है दोषी है, क्योंकि वो अपनी पूजा समझ रहा है, तो वो पूजा भगवान को नहीं दे रहा है, अपनी पूजा समझ रहा है। जो वैष्णव हैं, गुरु हैं, साधु हैं, वो पूजा स्वीकार करते हैं तो वो पारदर्शी माध्यम होते हैं कि पूजा भगवान को दे देते हैं, मेरी पूजा नहीं हो रही, भगवान की पूजा हो रही है। तो इस भाव से तो वो जो है पारदर्शी माध्यम होते हैं, तो स्वीकार करते हैं। गुरु गुरु की पूजा भी भगवान के समान होनी चाहिए, लेकिन वो गुरु भगवान के पारदर्शी माध्यम होते हैं। और गुरु को भी अगर भगवान से स्वतंत्र समझ करके आप पूजा कर रहे हैं तो वो भी आप दोषी हैं, है ना। गुरु भगवान के जो है प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, तो उनके माध्यम से मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है मतलब ये संबंध बनता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी जो ये बात बता रहे हैं, और इस श्लोक में यही कहा है कि जो सदस्यपति हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, और महाराज अंग जो यज्ञ कर रहे थे वो इसी प्रकार से कर रहे थे, देवताओं की पूजा हो रही थी उसमें, लेकिन देवता लोग नहीं आए। अब देवता लोग क्यों नहीं आए, इसमें क्या कारण था कि देवता लोग क्यों नहीं आए, कौन बताएगा? हाँ देवेंद्र कौन है? हाँ महाराज अंग को संतान नहीं थी, नहीं तो संतान नहीं थी ये कारण नहीं है। हाँ जी आप बोलिए। पूर्व जन्म के पाप के कारण उनको संतान नहीं थी, तो संतान नहीं उत्पन्न हुई ये कारण नहीं था कि देवता नहीं आए, क्योंकि संतान उत्पन्न नहीं होती है और राजा संतान उत्पन्न करता भी नहीं है, क्योंकि जैसे त्रेता युग में मान लो त्रेता युग की घटना हो या सत्ययुग की घटना हो, तो त्रेता युग की घटना है तो 10,000 साल तक तो मनुष्य की आयु होती है, तो राजा जो है संतान उत्पन्न नहीं करता, संतान उत्पन्न नहीं करता है, 10,000 साल की आयु तक वो संतान उत्पन्न नहीं करता है, उसके बाद ही संतान उत्पन्न करता है, क्योंकि जब संतान वो 10,000 साल की आयु में संतान उत्पन्न करेगा तो फिर वो जो पुत्र होगा वो राज्य में आसीन होगा, मान लो 25 साल या 40 साल की अवस्था में, तो फिर वो भी 10,000 साल तक राज्य करेगा। आप सुन रहे हैं? तो राजा लोग जो है राजर्षि होते थे तो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, विवाहित होने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, वे संतान उत्पन्न नहीं करते थे। सामान्य प्रजा संतान उत्पन्न कर सकती है, नहीं राजर्षि हैं, राजर्षि हैं ये, पत्नी के साथ भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो संतान उत्पन्न नहीं करते। मान लीजिए कोई राजा है 40 साल की अवस्था में संतान उत्पन्न कर दे, है ना, तो जब 10,000 साल की आयु होगी तो संतान की भी आयु 10,000 साल की हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किए तो संतान उत्पन्न थोड़ी उन्होंने की, 10,000 साल की आयु तक उन्होंने संतान उत्पन्न नहीं की, अश्वमेध यज्ञ तो किए और सीता जी के साथ थे भगवान राम, 10,000 साल तक भगवान राम सीता जी के साथ रहे और संतान उत्पन्न नहीं की, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो ये कारण थोड़ी है। हालांकि आप कह सकते हैं वो तो साक्षात भगवान है इसलिए देवता आएंगे, वो तो बहुत आकर्षण है देवताओं का, लेकिन एक दूसरा भी कारण है कि देवता लोग जो है ये नहीं सोचते कि भाई संतान पैदा नहीं हुई इसलिए संतान इसलिए वो नहीं आएंगे, बल्कि राजर्षि अंग का जो है देवताओं ने ये देख लिया कि संतान उत्पन्न नहीं होना है, क्योंकि वो भविष्य को भी जानते हैं। आप समझ रहे? तो जितने भी राजा हैं अश्वमेध यज्ञ करते हैं, संतान उत्पन्न नहीं उनकी हुई तो भी अश्वमेध यज्ञ करते हैं, देवता लोग आते हैं, लेकिन देवताओं ने ये देखा कि ये इन राजा का कुछ ऐसा दोष बन गया है कि इनके द्वारा संतान उत्पन्न नहीं होगी, आगे चल करके भी नहीं होगी संतान, है ना, इसलिए नहीं आए, है ना। तो अच्छा इस बात को जो है जो ऋत्विज लोग हैं वो नहीं जानते थे। पहली बात तो ये है, देखिए इसमें कितना शिष्टाचार है, राजा अंग जो है जब यज्ञ कर रहे हैं तो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, और अश्वमेध यज्ञ में 1 साल के लिए घोड़ा छोड़ा गया तो पूरी पृथ्वी में वो भ्रमण करके आ गया, और सेना जाती है, जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता है वो स्वयं नहीं जाता, वो यज्ञ स्थल में ही रहता है, और सेना जाती है और उनके सेनापति या मंत्री जो भी हो वो घोड़े की पीछे पे जाते हैं घोड़े की रक्षा के लिए, और जहाँ जहाँ घोड़ा जाता है तो उस देश के राजा अगर पकड़ते हैं तो घोड़े को जो है वो मतलब छुड़ाते हैं युद्ध करके, उस राजा को परास्त करके। और बहुत से राजा लोग नहीं पकड़ते हैं तो ये मान लिया जाता है कि वे सब पराजित हो गए हैं। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी को राजा जो है पराजित करता है, सम्राट इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ का जो है पूरा काम हो गया था, मतलब घोड़ा आ चुका है। अब इसके बाद जो है वो हवन करते हैं, हवन करते हैं तो देवताओं के नाम से यज्ञ में आहुति डालते हैं। लेकिन जी महाराज स्वयंभू मनु का वंश है इतना पवित्र है कि देवता लोगों को जो है अग्नि में आहुति डालने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे स्वयं अपने हाथ में वो यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं, आते हैं स्वयं। तो ये परंपरा ही बन गई थी कि अब यज्ञ में आहुति नहीं डाली जाएगी, बल्कि देवता खुद आकर के अपने हाथ से यज्ञ का भाग ग्रहण करेंगे। और देवता लोग नहीं आ रहे हैं तो जो है राजर्ष अंग की चिंता हो गई, इसलिए उन्होंने मौन तोड़ा, क्योंकि जो यजमान होता है वो मौन धारण करता है, मौन व्रत धारण करता है। जब यज्ञ जब नहीं आए तो उन्होंने अनुमति मांगी कि मैं मौन तोड़ूं, तो उन्होंने ऋतुजों से अनुमति मांगी कि मैं अब बोलना चाहता हूँ, है ना। और किसी कोई जो है उनका दोष नहीं बता रहा है, यज्ञ में जो है देवता नहीं आ रहे हैं, कोई राजा का दोष नहीं बता रहा है, मेरे राजा का दोष नहीं बताना चाहिए। तो राजा खुद अपना दोष पूछ रहा है कि मेरे से क्या दोष हुआ, इसलिए उसने पहले तो राजा अंग ने अनुमति मांगी कि अब मैं मौन तोड़ सकता हूँ, और उन्होंने कहा ठीक है तो पूछिए। तो उन्होंने पूछा कि कोई दोष हुआ, तो ऋतुज ने कहा, जो ऋतुज थे है ना, तो जो ऋतुज थे तो चार प्रकार के ऋतुज होते हैं, एक तो है होता, होता मतलब जो आहुति डालता है, दूसरा उद्गाता, उद्गाता जो मंत्र पाठ करता है, तीसरा अध्वर्यु, अध्वर्यु जो कि देवताओं का आह्वान करता है, और चौथा ब्रह्मा, ब्रह्मा उसको कहते हैं जो यज्ञ की जितनी भी कमी कहीं भी कोई कमी हो तो वो देखता है कि कहाँ कमी हो रही, कुछ कमी हो रही है, तो पूरी की पूरी जो कमियाँ हैं वो ब्रह्मा देखते हैं। ये ब्रह्मा ब्रह्मा जी नहीं है, ये ब्रह्मा जो है एक वो है, मतलब उपाधि है, किसी ऋतु को दी जाती है, उसका कार्य यही होता है कि वो देखे कि कहाँ पर किस तरह की त्रुटि हो रही है यज्ञ में, है ना। तो जो ऋतु थे, ऋतु का मतलब जो होता थे, तो उन्होंने बताया कि यज्ञ की सामग्री में कोई कमी नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार का जो है मतलब भाव में भी कोई दोष नहीं आया कि यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने में कुछ गलत भाव आ जाए, क्योंकि ये सब देवताओं के लिए है। तो शुद्ध भाव से यज्ञ की सामग्री एकत्रित की है, तो उन्होंने बताया कि यज्ञ की सामग्री में भी कोई कमी नहीं है, जैसे घी है किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, और जो लाए हैं जिन्होंने एकत्रित किया है उनके भी भाव में किसी प्रकार का दोष नहीं आया कि वे स्वयं सोचे कि हम इसको भोगें। तो उन्होंने तो बताया, लेकिन फिर राजा ने जो है मतलब सब पूरी सभा में प्रश्न किया कि आप लोग बताइए मेरी ओर से कुछ अपराध हुआ है, कोई दोष हुआ है तो आप लोग बताइए। तो राजा स्वयं जो है मतलब अपना दोष पूछ रहा है, ये बड़ा शिष्टाचार है कि हम लोग जो है हमारे व्यवहार से किसी भक्त को अगर कुछ कष्ट हो रहा है तो मैं खुद ही पूछूं कि भाई मेरे व्यवहार से आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। तो ये बहुत अच्छा है, गुण है, शिष्टाचार है ना। बल्कि उल्टा होता है कि अगर मान लीजिए कोई बताता है कि भाई आपके व्यवहार में ये कमी है तो और उल्टा मैं नाराज़ हो जाऊँगा, हाँ ये मेरी कमी कैसे बता रही, तुम्हारे अंदर ये कमी, इनके अंदर ये कमी, उनके अंदर ये कमी है, और सबकी कमी बताएंगे, मेरे अंदर क्या कमी है। लेकिन यहाँ राजा है, एक कितना शिष्टाचार है, और यथा राजा तथा प्रजा, जब राजा ऐसा होगा तो प्रजा भी ऐसी होगी। तो राजा स्वयं पूछ रहे हैं कि मेरे अंदर कोई दोष हो तो आप लोग बताइए मेरे अंदर क्या दोष है, और जो सदस्यपति है वो बता रहे हैं, यानी जो ब्रह्मा है जिनका कार्य है दोष बताना, तो वो बता रहे हैं कि आपके इस जीवन में तो कोई दोष हुआ ही नहीं है, मन से भी तो कल अनुत्तमा प्रभु ने बहुत अच्छा इस विषय में प्रकाश डाला था कि ऐसे भी मतलब राजा होते हैं या होते थे हुए है ना, कि मन से भी जो है कोई उन्होंने पाप नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पिछले जन्म में कुछ ऐसा दोष हो गया है जिसे आप इस जन्म में संतानहीन हैं, मतलब संतान नहीं होना है आपको, आपको संतान नहीं होना है, पहले से सोच गया है कि आपको संतान नहीं होना है, तो ये जो है आपका दोष बन गया। तो इस विषय में संतान नहीं होना है तो पिछले जन्म में कोई दोष बना तो ये तो नहीं बताया गया कि क्या दोष हुआ था पिछले जन्म में किस प्रकार का, लेकिन कुछ घटनाएं मिलती हैं जैसे सूर्य वंश में जो राजा हुए दिलीप, राजा सगर के राजा सगर के पुत्र हुए असमंजस, और असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, और अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। तो राजा दिलीप को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो वशिष्ठ मुनि उनके पुरोहित थे, तो उन्होंने पूछा कि मेरे कोई संतान नहीं उत्पन्न, क्योंकि राजा जो है फिर चिंतित हो जाता है कि जब उनकी आयु जो है मतलब पूरी होने वाली है तो पुत्र उत्पन्न करना जरूरी है ना, आयु जब पूरी होने वाली तो फिर पुत्र उत्पन्न करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि वंश चलाने के लिए आवश्यक है। तो जब कोई पुत्र नहीं हो रहा है उनको, तो फिर जो है वशिष्ठ मुनि से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपका इसी जीवन में कुछ दोष हुआ है, पिछले जीवन में नहीं इस जीवन में ही दोष हुआ है। क्या दोष हुआ है? आप एक बार स्वर्ग गए थे, तो इतने मतलब श्रेष्ठ राजा थे कि स्वर्ग वैसे जाते थे जैसे मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से जाता है बम्बई कलकत्ता जाता है ऐसे जो है स्वर्ग ऐसे उनका जो है स्वर्ग आना जाना चलता है इसी प्रकार। तो आप स्वर्ग गए थे, तो स्वर्ग से जब लौट रहे थे तो रास्ते में कामधेनु गाय मिली आपको, तो आपने उसकी ना परिक्रमा की ना उसको प्रणाम किया और आप आ गए, तो वो दोष बन गया आपका, जैसे कि आपको पुत्र नहीं पैदा हो रहा है। तो एक शिक्षा मिलती है इस तरह से कि अपने ऐसे कोई सम्मानित हो उसका सम्मान नहीं करते हैं है ना, और ऐसे चलते हैं है ना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना तो बहुत बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर सम्मान नहीं करते हैं ठीक से तो उसमें भी बड़ा दोष होता है ना। तो फिर अब क्या किया जाए इसके लिए? तो महाराज दिलीप से जो है वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि कामधेनु की पुत्री नंदिनी मेरे पास है, मेरे आश्रम में है, तो आप इसकी सेवा करो तो आपका वो दोष दूर हो जाएगा, तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो महाराज दिलीप जो है नंदिनी की सेवा करते थे, तो नंदिनी जहाँ जहाँ मतलब जाती थी वन में तो उसके पीछे पीछे जाते थे, और जब वो खाती थी तब वो खाते थे, जब वो पानी पीती थी तो ये पानी पीते थे, इस तरह से जब वो सोती थी तो ये सोते थे, जब वो जागती तो ये जागते थे, इस तरह से नंदिनी की जो है इन्होंने सेवा की। और फिर आगे चल करके क्या हुआ कि इनकी परीक्षा भी ली गई कि एक शेर ने नंदिनी को पकड़ लिया जंगल में खाने के लिए, तब राजा ने कहा कि ना 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 आप इसको मत खाइए, आप मुझे खा लीजिए, इसको मत खाइए है ना। तो वो जो शेर था वो कोई देवता ही थी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, कोई देवता ही थे, धर्म देवता था, धर्म देवता थे। तो फिर वो संतुष्ट हो गए कि आपने जो है मतलब इतना त्याग किया है नंदिनी की सेवा में, तो आप उस दोष से मुक्त हो गए कि आपने कामधेनु को नमस्कार नहीं किया, सम्मान नहीं दिया था, आपको पुत्र होगा। तो फिर राजा दिलीप के भगीरथ पुत्र हुए जो गंगा जी को लाए। तो इस तरह से जो है उदाहरण मिलते हैं। इसी प्रकार से एकादशी महात्मा भी पवित्र नाम की एकादशी आती है हमारे वैष्णव कैलेंडर में, तो उसके महात्म लिखा हुआ है कि राजा महीजित एक राजा थे, बहुत ही पुण्यात्मा थे, महेशमतीपुरी के राजा थे, उनको भी पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था। जब आयु ढलने लगे तब राजा को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जरूरी है, और पुत्र ना उत्पन्न हो तो फिर चिंता की बात हो जाती है। तो राजा महीजित को जो है अब आयु ढल रही है तो पुत्र चाहिए, और पुत्र नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो सब जो मंत्री थे सबसे उन्होंने मतलब बताया कि मेरा क्या दोष हो गया। तो जितने मंत्री थे वो सब जो है वन में जाते हैं तो वन में लोमस ऋषि का आश्रम मिलता है, तो लोमस ऋषि से बताते हैं कि हमारे महाराज तो बहुत ही पुण्यात्मा हैं और प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते हैं, उनके राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी प्रकार का दोष नहीं है, लेकिन उनको पुत्र नहीं हो रहा है, क्या कारण है? तो लोमस ऋषि ने ध्यान किया और ध्यान करके बताया कि आपके जो राजा हैं पिछले जन्म में एक व्यापारी थे और एक गांव से दूसरे गांव में अपना सामान बेचने के लिए जाते थे, तो किसी गांव में ये उस समय जेठ का महीना था तो बहुत गर्मी होती है, तो उस गर्मी में ये राजा एक कुंड से जो है पानी पीने लगे, लेकिन उसी समय एक गाय जिसने बछड़े को जन्म दिया था है ना, तो उसको बहुत प्यास लगती है, बछड़े को जन्म देती है तो उसके शरीर से काफ़ी स्राव निकलता है तो उसको प्यास लगती है, तो पानी पीने के लिए आई, लेकिन इसने जो है उस गाय को हटा करके और खुद पानी पिया, तो इस दोष से अब राजा को पुत्र नहीं हो रहा है, आप समझ रहे है ना, तो दोनों घटनाओं में जो है मतलब गाय की बात आती है, लेकिन मतलब कहने का यह है कि कोई भी व्यक्ति हो अपने से ज़्यादा सम्मानित हो आप सम्मान नहीं करते हैं तो वो जो है मतलब दोष बन जाता है, ये नहीं कि नहीं निंदा तो नहीं किया मैंने, कोई प्रहार तो नहीं किया है, लेकिन उचित अगर व्यवहार नहीं करते हैं किसी के साथ जो सम्मानित है उचित सम्मान नहीं करते हैं तो उसमें भी दोष बन जाता है, तो ये जो है मतलब हम चर्चा कर रहे थे कि राजर्षि अंग के जो है पिछले जन्म में कुछ इस प्रकार का दोष हो गया है, तो उसकी चर्चा नहीं हुई दोष की, लेकिन ये बात जो है मतलब बताई। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज ने भी अश्वमेध किया, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तो युधिष्ठिर महाराज ने भी अश्वमेध किया, तो उनके सब पुत्र मारे गए थे, जितने पुत्र थे सब मारे गए, पांचों पांडवों के पुत्र थे और अलग अलग पत्नियां भी थीं, द्रौपदी से भी एक एक पुत्र पैदा हुए थे वो भी मारे गए, और अन्य पत्नियों से भी पुत्र हुए वो भी सब मारे गए, तो कोई पुत्र नहीं था, लेकिन तो अभी अश्वमेध यज्ञ किया और देवता लोग आए, ये कारण तो है कि भगवान कृष्ण थे उस यज्ञ में, स्वयं भगवान कृष्ण थे इसलिए देवता आए, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि उनके जीवन में इस प्रकार का कोई दोष नहीं हुआ था, ऐसा अपराध नहीं हुआ था, तो देवता लोग जो है मतलब ये देखते हैं, जैसे उग्रसेन महाराज हैं उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया, तो उनके भी जो है कंस आदि नौ पुत्र थे उग्रसेन के, तो वे सब मारे गए थे भगवान के हाथों, मारे गए थे, तो महाराज उग्रसेन जो है बहुत चिंतित थे कि मुझे जो है नारद जी ने बताया कि अश्वमेध यज्ञ करने से व्यक्ति जो है मतलब सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, तो मेरे पुत्र ने तो हजारों बच्चों की हत्या की थी, कंस ने जो है हजारों बच्चों की हत्या की थी, केवल देवी के छह पुत्र मारे इतनी नहीं है, बल्कि उसने जो है हत्या कराई थी, हजारों बच्चों की हत्या कराई थी, उसने आदेश दे दिया था अपने राक्षसों को, उसके साथ जितने असुर थे उनको आदेश दे दिया, पूतना है और सबको, कि जिन 10 दिन के जितने भी बच्चे हुए हैं सबको मार डालो, हजारों बच्चे, तो कंस ने मरवाए, तो वो हत्या तो कंस को ही लगी, तो उग्रसेन महाराज कहते हैं कि पता नहीं कंस ने जो है हजारों बच्चों की हत्या की है, पता नहीं किस लोक में गया होगा, और पुत्र का जो दोष है वो पिता को लगता है, तो मुझे भी हत्या लगी है, तो मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ इस पाप से मुक्त होने के लिए, है ना, तो इस तरह से उग्रसेन को चिंता थी, तो उनके भी पुत्र सब मारे गए, उग्रसेन महाराज के भी पुत्र सब मारे गए, लेकिन देवता लोग तो आए उनके यज्ञ में, तो मतलब कहने का ये है कि किसी के पुत्र सब मर चुके हैं या किसी का पुत्र पैदा ही नहीं हुआ, तो ये कारण नहीं होता कि देवता लोग नहीं आएंगे, देवता लोग नहीं आएंगे, देवता लोग नहीं आए महाराज अंग के यज्ञ में, तो कुछ कारण ऐसा कुछ बन गया था, कुछ ऐसा दोष बन गया था, है ना। अब इसमें जो है एक बात और भी समझ में आती है कि जो सदस्य पति हैं वो अपनी तरफ से तो अच्छा सुझाव दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुझाव जो है काम नहीं करता। उन्होंने अपनी बुद्धि से सोचा कि हम भगवान की पूजा करेंगे पुत्र के लिए और तुम्हें अच्छा पुत्र भी प्राप्त होगा, तो पुत्र की भी प्राप्ति हो जाएगी और देवता लोग भी आएंगे, तो भगवान के कारण देवता आएंगे, क्योंकि भगवान आएंगे इसलिए देवता आएंगे और पुत्र की प्राप्ति होगी आपको तो देवता लोग आएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने तो मतलब अपनी तरफ से सबसे बढ़िया उपाय बताया, लेकिन आगे चल करके क्या होता है कि नहीं हुआ वैसा, वैसा नहीं हुआ। पुत्र तो हुआ, पुत्र तो उत्पन्न हुआ, और राजा का इसमें भी कोई दोष नहीं था, सब अच्छी प्रकार से यज्ञ की विधि का पालन हुआ और यज्ञ से जो है एक पुरुष यज्ञ कुंड से ही उत्पन्न हुआ है ना, जिसने क्या दी थी, खीर दी थी, वो आगे चल करके आएगा। हाँ, पायसम खीर, स्वर्ण पात्र में खीर, और वो जो है राजा ने जो है उस खीर को अपनी पत्नी को दिया, सुनीता को दिया। तो पुत्र उत्पन्न होना चाहिए, अच्छा पुत्र उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन इतना गलत पुत्र क्यों उत्पन्न हुआ, इतना गलत पुत्र क्यों उत्पन्न हुआ? ये कारण तो यह है कि उनकी जो पत्नी है वो मृत्यु की पुत्री थी जो अधर्म के वंश में पैदा हुई। लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि चूंकि प्रारब्ध अगर किसी का बन जाता है, किसी व्यक्ति का प्रारब्ध अगर बन जाता है ना कि भाई ये होना है या ये नहीं होना है, किसी का प्रारब्ध अगर बन जाता है तो भगवान से अगर प्रार्थना भी करें तो उसका कुछ रिजल्ट तो मिल जाता है, कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से नहीं होता, क्योंकि भगवान भी जो है प्रारब्ध को पूरी तरह से नहीं मिटाते हैं, कम कर देते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं मिटाते। तो पुत्र की तो प्राप्ति हुई, लेकिन वो नालायक पुत्र निकला। लेकिन नालायक पुत्र निकला तो महाराज अंग ने उसको भी भगवान की कृपा माना। एक ये भी शिक्षा है कि पुत्र अगर अच्छा हो तो भगवान की कृपा है, अच्छा पुत्र है, भगवान का भक्त है निकला तो हमारा उद्धार कर देगा, पूरे वंश का उद्धार कर देगा, तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। ये नालायक पुत्र निकला तो इसको भी भगवान की कृपा माना महाराज अंग ने। क्या कि ऐसे नालायक पुत्र से क्या होता है, व्यक्ति अपनी भौतिक आसक्ति को छोड़ करके भगवान का भजन करे, तो ये भी जो है भगवान की कृपा है ना। तो इससे कई मतलब शिक्षाएँ मिलती हैं। पहली बात है कि प्रारब्ध, अगर प्रारब्ध बन चुका है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको बदलना, अगर बदल भी देते हैं भगवान की कृपा से कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ उसका अवशेष रह जाता है कि आपको जो है भोगना पड़ेगा है ना। लेकिन जो भक्त होते हैं वो उसको भगवान की कृपा के रूप में लेते हैं और उसका जो है लाभ उठाते हैं, भगवान की कृपा ही मानते हैं। तत्तेन अनुकंपां सुसमीक्षमाणो, तो भगवान की कृपा ही देखना, और सु का मतलब अच्छी प्रकार से, समीक्षमाणो माने देखता, देखता हुआ, तो आपकी कृपा तो वो हमेशा देखता है कि जो कुछ भी है वो कृपा भगवान की है। लेकिन भुंजान मेव आत्मकृतम विपाकम, कुछ दोष अगर है तो मेरे आत्मकृतम अपने द्वारा किए गए विपाकों का दोष है ना। तो अगर कुछ दोष है तो मेरे पिछले कर्मों का दोष है ना। हृदमा पप्पू फिर विधन नमस्ते, हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार करता है, जीवित जो मुक्ति पदे सदाए भात, अगर वो जीवित रहता है तो मुक्ति पद के लिए वो जो है अधिकारी हो जाता है, मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है ना? तो इसमें ये बात है। अच्छा, एक बात और भी है कि यहाँ पर जो वे कह रहे हैं कि यज्ञ पुरुषार्थ साक्षात अपद्याय हरिर्व्रता, कि पुत्र प्राप्ति के लिए हम साक्षात यज्ञ पुरुष हरि की उपासना करेंगे है, तो इसमें क्या है, मतलब एक बात और भी है कि देवताओं की पूजा जब कर रहे हैं तो बिना किसी कामना के कर रहे हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं महाराज अंग तो बिना किसी कामना के कर रहे हैं, और अगर कुछ कामना हो तो भगवान की पूजा करो, क्योंकि भगवान की पूजा करने से जो है आप बंधन में नहीं पड़ेंगे। इसमें यह भी है, अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार भी है, चाहे कोई कामना ना हो, चाहे सब प्रकार की कामनाएं हो है। तीव्रेण भक्ति योगे निजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए। तो इसमें एक जवाब, ये बात भी समझ में आती है ना। अप्रत्याय हरिर्वृता। तो पुत्र प्राप्त करने के लिए अगर यज्ञ करना है तो हम देवताओं से नाम मांग करके हम किससे मांगे, भगवान से मांगे। और अगर देवताओं की पूजा करना है तो कुछ नहीं मांगना, आप समझ रहे हैं, तो इसमें बंधन है। अगर देवताओं से आप कुछ मांगते हैं तो इसमें बंधन है। देवताओं से आप मांगते हैं तो कुछ बंधन है, है? उनसे फिर आपका कुछ संबंध बनेगा, है? आपकी आसक्ति होगी या आप उनकी तरफ झुकेंगे तो वो जो है फिर भगवान की भक्ति में बाधक हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात ये भी कि देवता लोग अगर पुत्र देते हैं तो कुछ और भी शर्तें रखते हैं। जैसे महाराज हरिश्चंद्र ने जब पुत्र देवताओं से मांगा तो वरुण देवता ने कहा ठीक है मैं पुत्र दूंगा, उसी पुत्र के द्वारा मेरी पूजा करना यानी उसकी बलि चढ़ाना है। अब लो फिर फायदा क्या हुआ है कि मैं पुत्र दूंगा उसी पुत्र के द्वारा मेरी पूजा करना की बलि चढ़ाऊँ, तो फायदा क्या है, तो और कष्ट की बात है। लेकिन वो महाराज हरिश्चंद्र जो है फिर टालते रहे। जब पुत्र उत्पन्न हुआ वरुण देव ने कहा आप पुत्र हुआ है आप मेरी पूजा करो, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं उसके जब दांत निकल आएंगे तब वो शुद्ध होगा। ठीक है अब दांत निकल आए, वरुण देव ने कहा चलो यज्ञ करो अब। तो फिर उन्होंने कुछ और बोला कि अभी 10 वर्ष की आयु में जो है उपनयन होगा तब वो शुद्ध होगा। ठीक है 10 साल का हो गया अब चलो यज्ञ करो। फिर उन्होंने कहा कि नहीं 16 साल की आयु में जब धनुर्वेद की शिक्षा सीख लेगा तब वो पवित्र होगा। तो जब धनुर्वेद उसने सीख लिया और उसको पता चला कि मेरे पिता जो है अब तो बंधे हुए हैं कि तो मुझे मरना पड़ेगा, तो वो जो है घर छोड़ के भाग गए, रोहित घर छोड़ के भाग गए और वरुण देवता ने उनको जलोदर रोग पैदा कर दिया हरिश्चंद्र को। तो इसमें और भी समस्या पैदा होती है, तो इसलिए देवताओं से कुछ कामना ना किया जाए ज़्यादा अच्छा है ना। तो देवताओं की पूजा करना है तो कर्तव्य की भावना से करना है, और ये कलयुग में तो वो भी नहीं हो सकती, देवताओं की पूजा भी नहीं हो सकती है, क्योंकि देवताओं की पूजा में अनेक प्रकार के विधि विधान, ये कुछ कमी हो गई वो कमी हो गई वो नाराज हो गए नाराज हो जाएंगे, तो आप विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते, शुद्ध मंत्रों का पाठ नहीं कर सकते। तो इसलिए देवताओं की पूजा की जगह जो है ये संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ में मतलब साक्षात भगवान का पूजन होता है, तो देवताओं से कुछ लेना देना ही नहीं है। और सब देवता स्वतः प्रसन्न होते हैं तो बुलाने की जरूरत नहीं है, देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं है, अगर उनको आना है तो स्वतः आएंगे और आते भी हैं देवता लोग। तो भगवान की जो है जो चर्चा होती है भगवान की कथा होती है, तो उससे भगवान अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो सब देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, उनको जो है बुलाने की भी जरूरत नहीं है, उनके बारे में कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है कि भाई उनको प्रसन्न करना है या नहीं प्रसन्न करना है। तो ये सब जो है मतलब बातें हैं जो कि हमने चर्चा की है आज के श्लोक में। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई समीक्षा, ऋषि कुमार है ना भाई, चालू है चालू है। पुराण में धन्यवाद।
दूसरा एक प्रश्न जब उन्होंने करा कि द्वापर परिचर्याएं होते हैं, द्वापर युग में तो अर्चन वगैरह की उपासना पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन हम हमने देखा कि इतने सारे यज्ञों की यज्ञों का अनुष्ठान होता है द्वापर युग में, वो ऐसा क्यों पितृ का अनुष्ठान?
ऐसा है कि यज्ञ बंद नहीं होते हैं द्वापर युग में, लेकिन सामान्य लोगों के लिए जो है ये बताए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब जो दूसरे यज्ञ हैं वो ना हो, कलयुग में तो फिर संभव नहीं है ऐसे यज्ञ करना। फिर भी कुछ लोग करते हैं या कुछ मतलब विधि विधान जानते हैं तो हो भी रहे हैं, होते भी हैं। लेकिन सामान्य लोगों के लिए जो है द्वापर युग में परिचर्या है और कलयुग में हरिनाम संकीर्तन है। तो इसलिए चैतन्य महापुरुष जी आए, चैतन्य महापुरुष पतितों का उद्धार करने के लिए आए। तो कलयुग में बहुत पतितों की बहुत संख्या है, बहुत कम ही लोग हैं जो कि कुछ योग्य हैं। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग हैं योग्य और दूसरी विधियों का पालन कर सकते हैं, लेकिन पतित लोगों के लिए कोई विधि नहीं है। नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा, अन्यथा गति नहीं है। तो कलयुग के पतित हैं, कलयुग से जो है जो प्रभावित लोग हैं, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग जो है मतलब कलयुग से दूषित नहीं होते हैं और वो कुछ विधियों का पालन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, आप भारत, हाँ चार प्रकार के ऋतुज, हमने जो चार प्रकार के ऋतुज बताए तो उसमें एक तो है होता। होता का मतलब है जो यज्ञ कुंड में आहुति डाले उसको होता बोलते हैं। दूसरा होता है उद्गाता, उद्गाता जो मंत्र पाठ करता है। और तीसरा है अधर्यु, अधर्यु जो देवताओं का आवाहन करता है। और चौथा होता है ब्रह्मा, जो यज्ञ में कुछ कमी अगर है तो वो देखता है कि भाई कहाँ कमी हो रही है, मंत्र में कमी हो रही है या सामग्री में या यजमान में कोई कमी है, तो वो सब जो है कमियाँ बताता है, तो ब्रह्मा। तो ऐसे जो है मतलब चार प्रकार के ऋतुज हैं। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि एक ही होते हैं ये, जैसे होता एक ही हो, कई लोग होता हो सकते हैं, एक भी हो सकता है होता हो, कई लोग हो सकते हैं, ऐसे उद्गाता भी कई लोग हो सकते हैं, ब्रह्मा भी कई लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर सतस पतय ऊँचू जो बताया गया है तो वो बहुवचन में बताया गया है कि सदस्यपतियों ने कहा। तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति नहीं है जो ब्रह्मा का कार्य कर रहा है, यहाँ कई लोग हैं। ठीक है ना, ऋतुज, ऋतुज का मतलब है जो यज्ञ कराने वाले हैं ब्राह्मण, वो ऋतुज कहलाते हैं। तो उन्हीं में जो है चार प्रकार के होते हैं जो चार प्रकार के अलग अलग काम करते हैं। ऋतिक सिस्टम, हाँ, जो इन लोगों ने जो किया है, ऋतिक सिस्टम वाले जो मधु पंडित ने या कुछ लोगों ने इस तरह से जो बना दिया है, एक सिद्धांत बना दिया है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि हम लोगों को बहुत आवश्यक है जानना और इससे जो है बचना भी चाहिए। तो जो ऋत्विक पद्धति वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि अब प्रभुपाद के बाद जो है कोई शिष्य परंपरा नहीं है कि प्रभुपाद के बाद कोई शिष्य हो, अब तो प्रभुपाद ही जो है गुरु हैं, आचार्य हैं, दीक्षा देने वाले, और जितने गुरु हैं जो दीक्षा देने वाले हैं वे अपने को गुरु नाम ना माने, वो ऋत्विक हैं, ऋत्विक आचार्य हैं वो, हैं, और वो प्रभुपाद का ही शिष्य बनाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने मतलब वो गुरु परंपरा ही समाप्त कर दी, है ना। तो ये काफ़ी गलत है, इसका जो है काफ़ी विरोध हो रहा है, लेकिन उन लोगों ने जो है मतलब ये सुझाव दिया है, इस तरह से जो है वो इस कौन से अलग हो गए हैं और एक अपना अलग ही एक दल बना लिया है, है ना। और वो जो है इस कौन को सुधारने के लिए वो काफ़ी मतलब इस प्रकार से कुप्रचार कर रहे हैं और काफ़ी जो है निंदा कर रहे हैं, जिसको उनके गुरुओं की निंदा कर रहे हैं, तो हमें इससे बचना चाहिए। तो ऋत्विक कहते हैं भाई आप ऋत्विक आचार्य हैं, दीक्षा गुरु नहीं है, कोई दीक्षा गुरु ना बने, ऋत्विक आचार्य बने हैं कि प्रभुपाद का शिष्य, जितने भी शिष्य बने हैं वो जो है प्रभुपाद के शिष्य हैं, आप तो केवल ऋत्विक हैं, आप सुन रहे। तो कोई व्यक्ति जो है मतलब ऋत्विक बन जाता है तो वो केवल वो दीक्षा का माध्यम बन जाता है, लेकिन वो दीक्षा गुरु नहीं है, उसने दीक्षा नहीं दी आपको, वो प्रभुपाद से ही आपको दीक्षा प्राप्त हुई है, आप समझ रहे ना। हाँ जी, एक सेकेंड, और किसी का प्रश्न है? हाँ जी, आप हैंड माइक कहाँ गया, चालू है जी। चालू नहीं है। सम्मान देखिए, एक तो है कि भूल से हो जाता है दोष, अगर भूल से भी दोष हो जाता है तो आपको इतना सावधान होना चाहिए कि भूल से भी नहीं होना चाहिए। जैसे आग में आपने हाथ डाला है ना, तो भूल से भी अगर आपने हाथ डाला तो आपको पता चलता है कि आपने कितनी बड़ी गलती की, भूल से भी नहीं डालना। लेकिन इस तरह से कुछ अगर दोष होता है, भूल से हो गया तो क्या हुआ, भूल से हो गया, तो ये चेतना गलत होती है, ये चेतना गलत है, ठीक है ना। आपको भूल से भी ऐसा व्यवहार नहीं करना है ना, आपको डरना चाहिए। तो एक जो है मतलब भावना इस प्रकार की होनी चाहिए कि भाई मैं जो है मतलब डर के रहूं, मेरे से इस प्रकार का कुछ अपराध ना बन जाए। तो एक डर का जो है एक भाव बना बनना चाहिए, है ये बात है इसमें। हाँ वो ठीक है, ऐसे भूल से हो जाए तो कोई मतलब उसमें दोष नहीं लगता है, और जो वैष्णव है वो भी समझ लेगा कि चलो भूल से हो गया। लेकिन अपने अंदर वो भावना नहीं होना चाहिए कि भूल से हो गया तो चलता है, भूल से तो हो जाता है और भूल से मैं करता रहूँगा, तो भूल से नहीं हो रहा है, लेकिन वो मान लेता है कि मैं भूल से कर रहा हूँ, है ना। आपका प्रश्न
प्रभु जी, पढ़ा है कि
यज्ञ पुरुष यज्ञ भोक्ता एक ही मतलब है। पुरुष का मतलब भोक्ता, पुरुष का मतलब भोक्ता, प्रकृति का मतलब भोग्या। तो हम लोग प्रकृति हैं, हम भगवान के सेवक, हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान को सुख देने के लिए हैं, तो हमें सदा सुख प्राप्त होगा। तो हमारा ये स्वरूप है कि हम उनके दास हैं, तो प्रकृति हैं और भगवान पुरुष हैं। तो यज्ञ पुरुष यज्ञ भोक्ता एक ही मतलब है, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? अच्छा आप प्रश्न। ऋत्विक मतलब ऋत्विक वो उन लोगों ने जो है मतलब प्रभुपाद की कुछ बात पकड़ ली, प्रभुपाद की उन्होंने कुछ बात पकड़ ली कि प्रभुपाद ने ऐसा बोला, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा बोला या नहीं बोला तो इस विषय में तो है अभी मतलब वो विवाद चल रहा है कि प्रभुपाद ने वास्तव में क्या बोला, है ना। तो उनका जो हो मतलब कुछ वार्तालाप हुई थी उनकी तमाल कृष्ण गोस्वामी के साथ में, तो उसका अभी भी टेप सुरक्षित है कि प्रभुपाद ने बोला कि आगे चल करके तुम्हारे शिष्य ये होंगे, शिष्य तुम्हारे ही होंगे, है ना। लेकिन प्रभुपाद भी संस्थापक आचार्य हैं, तो प्रभुपाद का सबसे महत्व है, हर मतलब 10,000 साल तक जितने भी शिष्य होंगे तो प्रभुपाद ऋतु नहीं संस्थापक आचार्य हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्व प्रभुपाद का है ही है, ठीक है ना। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी दीक्षा जो है हमें किसी से मिलती है तो उनका भी सम्मान है और उनका भी पूरा महत्व है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय।